ओम शांति।
ओम शांति।
भगवान को कितना दिन है? कितना दिन है?
क्या हुआ?
बाबा आने के लिए कितना दिन?
अच्छा
20 दिन का क्या प्रोग्राम बना?
20 सूत्र गायन,
20 पॉइंट प्रोग्राम।
सही
बात। विजय के लिए ठोस योजना चाहिए, बिना योजना के कोई विजय नहीं होती। जितना महान लक्ष्य है उतनी उसकी तैयारी की वैसी ही चाहिए। चाणक्य सीरियल, चंद्रगुप्त सीरियल में एक सीन है जिसमें एक संवाद है दोनों का, जिसमें चंद्रगुप्त को प्रेम हो गया है किसी से। तो वो पूछ रहा है उससे कि इसमें गलत क्या है। तो वो कहता है उसको कि तुमको जो लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ विशिष्ट हो रहा है, ये कोई विशिष्ट नहीं है, केवल एक क्षणिक शारीरिक आकर्षण मात्र है। तो क्या ये प्रेम गलत है? उत्तर में उसने कहा है, अगर कोई साधारण व्यक्ति है उसके लिए ये ठीक है, कोई किसान है उसके लिए ये ठीक है, कोई व्यापारी है उसके लिए ठीक है, कोई पदाती सैनिक है उसके लिए ठीक है, पर जिसने अखंड भारत का सम्राट होने का लक्ष्य रखा है उसके लिए प्रेम आसक्ति और कामुकता आत्मघाती है। वर्षों से संजोए स्वप्न और अपने समूचे व्यक्तित्व का नाश करने वाला है ये प्रेम। तो जितना महान लक्ष्य है उतना महान त्याग भी चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। छोटे मोटे लोगों के लिए यह साधारण बात है, पर जिनका महान लक्ष्य है उनका त्याग भी उतना ही महान चाहिए। वो पूछता है उससे, चाणक्य के शिष्य, कि चंद्रगुप्त तो कोई ब्रह्मचारी नहीं है, तो क्या उसे प्रेम करने का भी अधिकार नहीं है? तो चाणक्य कहता है कि हाँ है, परंतु जब उसकी मां, उसकी मातृभूमि स्वतंत्रता के लिए तड़प रही है, उस समय किसी के प्रेम में बंधना, किसी से आसक्त होना, किसी नारी का आकर्षण अपने ही व्यक्तित्व का पतन करना, पावरफुल वाक्य है। तो महान लक्ष्य है हमारा, तो उसके लिए छोटे मोटे पुरुषार्थ नहीं चलेगा, सिर्फ पुरुषार्थ की पॉलिश लगानी पड़ेगी। उन्होंने बोला ना तीव्र पुरुषार्थ की पॉलिश। तो 20 दिन है तो 20 पॉइंट प्रोग्राम क्या क्या बनाएंगे प्रोग्राम में? शाम में 20 पॉइंट प्रोग्राम में क्या क्या हो सकता है? पावरफुल, छोटा मोटा नहीं, शक्तिशाली। विठल भाई बोलो ना।
बस योग में डूबे रहेंगे, योग में डूबने का प्रोग्राम।
ये तो बड़ा ऊंचा है, थोड़ा प्रैक्टिकल हो
गया। सहज योग में बड़ा
प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हाँ,
आत्मदृष्टि
दृष्टि। और
रोज एक एक प्रमाण लेके दिन भर, एक ही दिन में एक ही प्रमाण पे प्रैक्टिस कर सकते
हैं। और
व्यर्थ से किनारे की बात है, थोड़ा रुचिपूर्वक।
व्यर्थ के लिए बाबा ने स्लोगन एक था ना, वरदान था एक, अभी वरदान था ना एक हफ्ते में,
सूक्ष्म कमजोरी।
जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें, जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें। संगठन में बाबा ने एक मुरली में कहा है कि जितने समाचार दिलचस्प उतने ही वो व्यर्थ। किसने क्या किया, कौन क्या कर रहा है, इसमें जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा व्यर्थ। सुनते हुए भी नहीं, देखते हुए भी नहीं देखो। अगर सुनना पड़ता है तो उसके लिए बाबा ने कहा अपना पहले ब्रेक पावरफुल करो, सुना देखा कल्याण किया और फुल स्टॉप। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अरुचि व्यर्थ जितना समाचार, बाबा ने कहा ना ब्राह्मण संसार समाचार, जैसे वो न्यूज आती है ना उधर न्यूज टेलीविजन पर, आज के समाचार यहाँ पे भी समाचार होते हैं, इस डिपार्टमेंट में यहाँ यहाँ ये हुआ, बराबर है ना, इसमें इंटरेस्ट होता है। पर कर कुछ नहीं सकते, उसके वरदान में बाबा ने क्या कहा, कर कुछ नहीं सकते। तो देखा सुना, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुना। अगर जिम्मेवारी है, सुनना पड़ता है, सुना कल्याण किया, अपना ब्रेक पावरफुल किया और फुल स्टॉप। हाँ, विधि क्या बताई थी बाबा ने उस मुरली में, दृष्टि में और संकल्प में। अगर किसी के प्रति कुछ सुना तो दृष्टि में और संकल्प में उस आत्मा के प्रति घृणा भाव ना हो।
दृष्टि कौन पूछे कैसे है,
बहुत अच्छा। कोई पूछे ये आत्मा कैसी है तो बहुत अच्छा,
बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया।
तुम्हारा
तो सबसे पहला प्रोग्राम है व्यर्थ में अरुचि, व्यर्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं, समाचार सुनने में नहीं ना सुनाने में, ना खुद सुनो ना सुनाओ, ना अपना श्रृंगार बिगाड़ो ना दूसरों का श्रृंगार बिगाड़ो। यहाँ तो अपना भी श्रृंगार बिगाड़ते हैं और दूसरों का भी श्रृंगार बिगाड़ते हैं, अवस्था नीचे गिरा देते हैं, सुनकर और सुनाकर। तो एक दूसरा तो बहुत सूक्ष्म है बाबा ने, इसके लिए भी कहा अगर योग में हम बैठे और योग में बैठकर व्यर्थ सोच रहे हैं तो वो भी बोझ है, वायुमंडल को खराब करने का बोझ, छोटा मोटा बोझ नहीं है। और क्या प्रोग्राम बनाएंगे, मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर खास तुम्हारे खातिर आया हूँ,
उनको फीलिंग आ रही है बाबा ने, उनको क्या फीलिंग आती है,
तुम्हारे खातिर मैं अपना घर छोड़कर आया हूँ, है ना जी। और क्या करेंगे, एक तो ये प्रैक्टिकल मोबाइल, बहुत बड़ी मांग मोबाइल पर,
जब मोबाइल आ रहा था उसी समय बड़ी जानकी ने कितना पार्ट पक्का कराया,
नहीं मोबाइल का यूज करना माया है,
हिस्ट्री का कितना पार्ट पक्का किया, आज दादियां नहीं रही हम यूज हो गए लेकिन पार्ट तो पहले तो पक्का,
नहीं उसको यूज करने का तरीका माया, मोबाइल माया नहीं है, मोबाइल माया नहीं है, यूज करने का तरीका माया है।
तो मोबाइल के लिए क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा
टू दी पॉइंट पर
3 मिनट बात करना, बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, मिनिमम 3, मिनिमम तो आते बराबर सेवा अर्थ ठीक है, परंतु उसका भी ज्यादा विस्तार नहीं चाहिए, उसमें फिर माया आने के चांसेस है, जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ नहीं, नहीं सेवाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, सेवा से रिलेटेड नहीं, ऐसे ही ऐसी ही बात है, यहाँ वहाँ की बात है, इधर उधर की बात है, सेवा अर्थ तो वो तो फिर आधा घंटा भी चले तो उसमें तो सेवा है वो तो। अगर कोई परेशान है और हमको उसको ज्ञान सुनाकर उसकी स्थिति ऊपर ला रहे वो तो ज्ञान की सेवा है, अदरवाइज व्यर्थ। केवल बात ही नहीं करना, लिखना अर्थात SMS वो सारा भेजना, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, ब्राह्मणों का आधा समय तो इसमें जाता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इसको उधर भेजा, उसको उधर भेजा, जरूरत नहीं है ना, अपने आप को संयम जो है ना, संयमित जीवन ही ब्राह्मण जीवन की शोभा है। उसमें चाणक्य का और एक महावाक्य है कि भारत के सम्राट बनने की जो शैया है वह आत्म अनुशासन की शैया है। इसमें तुम्हें अपने शरीर को भी वज्र जैसा बनाना है तो अपने हृदय को भी वज्र जैसा बनाना है। अति भावुकता खतरनाक है। ये मार्ग जो है, तुम सन्यासी हो भले राजयोगी हो, उस दिन था तुम हो सन्यासी ही फिर भी, तो इसमें भावुकता ज्यादा नहीं चलेगी। बहुत ज्यादा फीलिंग, रोना, ये सब अध्यात्म में ये सब पार करके जाना होता है। तो सारा संसार तो भावुकता में ही डूबा हुआ है, जिसको किसी से प्यार, उसको उससे प्यार, उसका इसमें आसक्ति, उसका उसमें आसक्ति, उसमें डूबा है संसार।
इसमें एक लाइन और था कि तुम राजयोगी हो, राजसी हो, और क्या था, तुम जो खाओ पियो मौज करो, मेडिटेशन करो, उसमें हीरो नहीं,
आसक्त नहीं होना है किसी में, किसी भी बात में आसक्त नहीं होना है। तो एक है मोबाइल, उसके बाद और एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो है कि ऐसा नहीं कि ज्ञान अभी है नहीं हमारे पास, ज्ञान तो है पर वो मर्ज और इमर्ज होते रहता है। जब वो मर्ज हो जाता है तब गलतियां होती है। तो स्वचिंतन अर्थात बाबा ने कहा ना, अपनी सूक्ष्म गलतियां, छोटी छोटी गलतियां और सूक्ष्म कमजोरियों को भी मिटाना, परिवर्तन करना, ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज करना, धारणा स्वरूप बनना, पवित्रता अपना स्वधर्म है, ये है स्वचिंतन। स्वचिंतन अर्थात ज्ञान को सुनना, सुनाना, रिपीट करना नहीं,
नोट करना नहीं,
केवल डिस्कशन करना भी स्वचिंतन नहीं है। स्वचिंतन अर्थात अपनी छोटी छोटी गलतियां और सूक्ष्म कमजोरियों को मिटाना, समाप्त करना, ये है स्वचिंतन। तो उसके लिए तो, क्योंकि ज्ञान मर्ज होता है, इमर्ज होता है, मर्ज होता है, इमर्ज होता है, वैराग्य मर्ज होता है, इमर्ज होता है, आसक्ति और अनासक्ति, राग और विराग, सारा खेल है इसका। मन में कभी राग उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति, कल बोला था ना, व्यक्ति और वस्तु वैभव अल्पकाल और अल्पज्ञ है, व्यक्ति अल्पज्ञ है और वस्तु वैभव अल्पकाल है, विनाशी, किसी भी मायावी आकर्षण में उनकी आंख डूबेगी नहीं, जो रियलिटी में रहते वही उनकी रॉयल्टी है, कहीं पर भी उनकी आंख डूबेगी। तो बार बार हर घंटे में एवरी 15 मिनट ये चेक करते रहना, ये 15 मिनट में कहीं राग उत्पन्न तो नहीं हुआ किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति, अगर हुआ तो तुरंत करेक्ट करना, अपने आप को करेक्ट करो, क्योंकि गलतियां जो होती है विस्मृति, ये सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। ऐसा नहीं कि ज्ञानी नहीं है, ज्ञान तो है परंतु उस समय विस्मृत है, वहां गलती हो गई और तुरंत समझ में आ जाता है फिर उसको, ज्ञानी को तो समझ में आ जाता है मेरे से गलती हो गई। तो बार 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 एक घंटे में एवरी 15 मिनट रिटर्न बैक एंड चेक, कहां कुछ राग तो उत्पन्न नहीं हो गई, कोई आसक्ति तो उत्पन्न नहीं हो गई, राग तो उत्पन्न नहीं होगा, वैराग तो नहीं खत्म हो गया, 15 मिनट या आधा घंटा इस तरह से। और क्या प्रोग्राम बनाएंगे, नोट नोट
नोट जो नंबर वन बच्चा बाबा के बैठा हुआ
और और क्या बनाएंगे,
और जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है उस पर भी थोड़ा विधि पूर्वक हम यूज करें।
भले ऐसा है कि ट्रैफिक कंट्रोल में किसी की दिनचर्या ऐसी है कि अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करो, जरूरी नहीं है कि वो 10:30 or 12 ही करना, हम अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करें। दूसरा, उस ट्रैफिक कंट्रोल में हमेशा ही योग होगा ये जरूरी नहीं है, उसमें हम कभी कभी ज्ञान का भी चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बिजी अगर रहते हैं तो केवल पॉइंट याद करना मुरली का उस समय, वो भी एक बाप को याद करना, बाप के ज्ञान को याद करना एक ही है, थोड़ा उससे आसान है, बाप के ज्ञान को याद करना, एक तो बाप को याद करना, बाप के ज्ञान को याद करना, तो वो ज्ञान को स्मरण करना, या केवल मैं आत्मा हूँ, मुझसे किरने चल रही है, मैं आत्मा हूँ, ऊपर से किरने आ रही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, शक्तियां फैल रही है, छोटे छोटे बहुत ज्यादा करने गए तो कुछ नहीं होता,
कोई फिक्स कर लें अपने
हाँ,
अच्छा लगता है
छोटा छोटा बिल्कुल। और यहाँ पता नहीं, ये बात नहीं है, तो सबको पता है समान का अभ्यास करना, ये तो अटेंशन की बात है, खाली अटेंशन की बात है कि अटेंशन देना है, नहीं तो वो कई घंटे बीत जाते, 5-6 घंटे बीत जाते, फिर स्मृति आती
करना
चाहिए था, परंतु ये जो करना चाहिए था, फिर इसमें आत्मग्लानी, खिन्न भाव,
अपने
ये सब, हाँ वो सब आ जाते हैं, फिर भले ही वापस योग करो,
लेकिन
ये हार और जीत और हार और जीत और हार और जीत का खेल है, हर आत्मा के पुरुषार्थ का, हार होती है जीत होती है, हार होती है, एक ही संस्कार है जो कई लंबे समय से चल रहा है, उसको हमने जीतने की कोशिश की, जीत लिया, कई महीने तक ठीक रहा, फिर हार हुई, फिर जीता, फिर हार, फिर हार, फिर जीत, फिर हार, फिर जीत, न जाने कब से चालू है, कोई ऐसे कुछ ही संस्कार है हर आत्मा के जो उसको हाँ, तो वहां पे दृढ़ता चाहिए, फिर दृढ़ता के स्क्रू को टाइट करो तो अलविदापन समाप्त हो जाएगा, तो वहां दृढ़ता चाहिए। आज भी बोला ना, एक बल एक भरोसा है तो क्या विजयी, शक्ति अभी विजयी है, पांडव भी विजयी है, माया हमारे सामने क्या मूर्छित, सरेंडर
सरेंडर
सरेंडर हो जाएगी, एक बल दृढ़ता, आग चाहिए आग, श्याम भाई आग हल्का फुल्का नहीं, आग चाहिए आग, अंदर में आग जलती रहे, पुरुषार्थ करने की आग, उसके फिर नहीं होता, हल्का फुल्का से क्या होता है, हल्का फुल्का तो वैसे ही चलता है, संकल्प नहीं करो, उठते ही संकल्प शक्तिशाली हो, उठते ही पहला ही संकल्प, उठे और पहला संकल्प क्या है, वहीं से अमृत वेला चालू हो रहा है, वहां जाकर बैठे और तब चालू किया वो नहीं, उठा आग खुली, आग खुलते ही जो पहला संकल्प है वो सबसे शक्तिशाली, अपने बेड के पास किताब ही रख दो कोई सामान की, बस उठा और देखा कि मैं ये हूँ,
सामने चिपका दो,
बस सामने चिपका दो,
अगर सामने रहे तो नींद नहीं आएगी
हम जब मेडिकल स्टूडेंट थे तो याद रखने के लिए पूरा जिसके कमरे रहते थे हॉस्टल में, सब जगह बाथरूम में फॉर्मूले सब सब चिपकाया रहता था, पूरा कमरा भर के फॉर्मूले, केमिस्ट्री इसके उसके, पूरा साइंस, ड्रग्स के, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये बीमारी इसकी वजह से होती है, वो बीमारी उसकी वजह से, इसमें ये दवाई दी जाती है, उसमें वो दवाई दी जाती है, मलेरिया की ये ट्रीटमेंट है, टाइफाइड की ये ट्रीटमेंट है, पूरा 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 भर के
सपने वही आता है,
दिन रात वो देखते रहो, सोचते रहो, देखते रहो, जहां देखो वहां वही वही, तो वो उस तरह का करना होता है ताकि याद रहे, बार बार, क्योंकि खेल स्मृति और विस्मृति का है बस, ऐसा नहीं हमको ज्ञान नहीं है, सब ज्ञानी है, ज्ञान सबके पास है, खेल स्मृति और विस्मृति, बार बार अपने आप को याद दिलाना, बार बार भूल गए वापस याद दिलाओ, कौन हूँ, किसका हूँ, लक्ष्य क्या है, किस लिए आए यहाँ, संसार छोड़कर इस जंगल में क्यों आ गए थे राजू भाई, वही करने आए थे जो संसार में कर रहे थे, तो यहाँ क्यों आए थे, जंगल ही था ना जब आए होंगे सब, तो सारे समान एक ही समान है, समान एक ही है, उसके सब अलग अलग रूप है, सब समान हर तरफ से एक ही तरफ आता है, घुमा फिरा के एक ही है, चाहे किसी भी समान में स्थित हो जाओ, सारे समान एक दूसरे से लिंक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट एक ही है, पर वही करंट से इधर लाइट भी चालू है, इधर फैन भी चालू है,
रूप अलग अलग हो
जाए, उसके रूप अलग अलग है, और वो टाइम पे वो चाहिए, जब अंधेरा है तो यही चाहिए, वो नहीं काम करेगा, ऐसे भी इनका भी ऐसा ही है, समान एक ही है, ईश्वरीय शक्ति भी एक ही है, असंख्य शक्तियां नहीं है, शक्ति भी एक ही है, परंतु जब अंधकार है तो लाइट चाहिए, और जब गर्मी हो रही तो फैन चाहिए, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, या जो भी शक्ति है, शक्तियां असंख्य अलग अलग नहीं होती है, ईश्वरीय शक्ति एक ही है, समान एक ही है, उसमें सब समाया हुआ है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ, मैं देह का मालिक हूँ, मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ,
जैसे आत्मा इस शरीर से डिटैच हो जाती है, बाबा ने कहा इस शरीर से डिटैच हो जाओ, इस शरीर से डिटैच होकर बोलो बैठो, जैसे आत्मा शरीर से डिटैच होती है उसमें पावर भरना चालू तुरंत डायरेक्ट। जैसे आत्मा शरीर से डिटैच हुई पावर ऊपर से भरना चालू और निकलना चालू, विश्व को सकाश देने की जरूरत नहीं, अपने आप सकाश जाएगी। जैसे आत्मा देह से डिटैच हुई, उस मुरली में ये भी था, मुख से तो बोला जाते पर वास्तव में तुमको तो इससे भी परे जाना है, बोलने से भी परे जाना है, उसी मुरली में डिटैच वाली मुरली थी ना अभी, वो करेंगे हम डिस्कस। तो ये भी एक प्रोग्राम हो कि बार बार देह से डिटैच होना, कब, जब योग में बैठते तब नहीं,
पूरा दिन में
चलते फिरते उठते बैठते लाइट हाउस होकर चलो, चलते फिरते उठते बैठते तुम्हें लाइट होकर चलना है, मुरली थी ना अभी
लाइट हाउस,
बाप लाइट हाउस हो तो तुम भी लाइट हाउस। और यहाँ तो कितना अच्छा है वो समय, यहाँ तो एकांत है, बाहर तो खटमल है,
फोन तो ले
पीते है खाते है, यहाँ तो तुम्हारे पास अच्छा समय है, एकांत है, इस एकांत का फायदा उठाना है, स्थान का फायदा उठाना है। तपस्वी जीवन है ना, तो तपस्वी को जागृत करना है अपने अंदर की, हर एक में एक तपस्वी बैठा हुआ है उसको जगाना है। अखंड योग चलता रहे, अखंड आंतरिक अखंड योग, बाहर कर्म होते रहे पर आंतरिक अखंड योग, अखंड जो खंडित ना हो ऐसा, ठीक है। तो इसके बारे में और सोचो क्या क्या बना सकते। चलो आज की मुरली में माताजी क्या बोला बाबा ने, करें आज की मुरली से चालू करते बोलो। एक बल और एक भरोसा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा, गीत भी है ना, तो एक ही बल और एक ही भरोसा, और किसी पे भरोसा नहीं, उसी पे भरोसा, अगर वो है तो सब कुछ है। अगर ये स्थिति है तो बाबा ने कहा माया तो मूर्छित है, माया सरेंडर है, तुम विजयी हो, विजयी पांडव, विजयी शक्ति हो। और
अभ्यास करते रहे, एक बात की आगे स्कॉलरशिप मिल जाएगी,
स्कॉलरशिप ये है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, ये है ईश्वरीय लॉटरी, रेस करनी है इसमें बाबा ने कहा, इस स्कॉलरशिप के लिए रेस करनी है, याद की रेस नहीं करनी है, कल बोला था ना
रेस की धूल की,
धूल रेस की धूल का पर्दा, उसमें सच्चे हीरे भी छिप जाते हैं, तो रेस नहीं करनी है, रेस अच्छा जेलसी, हाँ चलेगा, प्रत्यक्ष तो हो ही जाएगी आत्मा। और क्या बोला आज, बाबा कहता है मेरे तो कोई भपका नहीं और मेरी कोई पलटन नहीं, शिवाचार्य का कुछ नहीं पर शंकराचार्य की पलटन भी है, भपका भी है, उसे शास्त्र की अथॉरिटी कहा जाता है, मेरे पास तो ना तो इन ये शास्त्र से सुनाते हैं ना वो सुनाते ना तुम सुनाते हो, ना ब्रह्मा ना बाप ना तुम, पहले तो इसका भपका होता है शंकराचार्य को याद किया। और और क्या बोला,
बाप का कर्म करते
खुश
नहीं रहते, खुश
ब्राह्मणों के दुखों के कारण क्या क्या है जीवन में, ब्राह्मणों के दुखों के कारण
ज्ञान की
ना रहना के कारण,
पूरा ज्ञान का
ब्राह्मण दुखी रहते हैं, अरे तुमको बाप डबल सिरताज बनाते हो उसको याद नहीं करते और अपने पति को याद करते हो जो तुमको पति बनाता है, अरे बाप तुमको विश्व की बादशाही देने आया है उसको तुम याद नहीं कर सकते, दुखी होने के कारण एक तो याद, यथार्थ याद नहीं है, पूर्ण ज्ञान बुद्धि में नहीं है, पूर्ण ज्ञान बुद्धि में नहीं है, यहाँ पर भी वही मर्ज और इमर्ज का खेल, भूलता है ज्ञान, दिन में कई बार भूल जाता है, तो बार बार याद करते रहना है आधे आधे घंटे में ज्ञान को। बाप को याद करना मुश्किल है हर बार,
ज्ञान का
ज्ञान को याद करते हो,
ज्ञान के आधार पर बाबा याद आएगा,
अपने आप याद आएगा
वो
नेचुरल है। इसके लिए एकदम सीधा अशरीरी होके बीच में बहुत व्यस्त है दिनचर्या, उसमें सीधा बाप को याद करना कहाँ है, ज्ञान को याद
पकड़ के रखा है
वहाँ पे, ज्ञान को याद करो,
ज्ञान
एक शक्तिशाली पॉइंट को याद करो, कोई तो ज्ञान की एक बहुत पावरफुल पॉइंट को याद करो। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक चाहिए पावरफुल पॉइंट्स का, कि जब भी कुछ हो जाए वो पावरफुल पॉइंट निकाले, इमरजेंसी पॉइंट्स चाहिए, एकदम बेहोश होने की अवस्था आ गई तो तुरंत इमरजेंसी
इंजेक्शन,
एकदम इमरजेंसी की स्क्रैच कार्ड रेडी चाहिए, ऐसा ना हो कि बेहोश हो जाए और फिर सीधा वेंटिलेटर पर, उसके पहले तुरंत पावरफुल पॉइंट। तुम महान कर्तव्य करने के लिए जन्म लिया, तुम आए किस लिए थे, कर क्या रहे हो, कितने महान संकल्प है ये सारे,
कहाँ जाना है, किधर
कहाँ जाना है, किसके पास आए हो, कौन तुमको मिला है और सोच क्या रहे हो। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, अव्यक्त वाणी 74, अगर तुम्हारे अंदर विकारी संकल्प उत्पन्न होते हैं तो सोचो कहाँ, क्या बोला था उसने, नहीं नहीं वो नहीं, कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ कुछ ऐसा गटर का कीड़ा या ऐसा कुछ, तो एकदम ऐसे बोला हुआ उसने नहीं कहाँ मेरे महान संकल्प और क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या ये महान आत्माओं के संकल्प, एक ही संकल्प कितना है, मैं महान आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ तो मेरे संकल्प महान, मेरा लक्ष्य महान, मेरे कर्म महान, मेरे बोल महान। कल की मुरली रियलिटी वाली, जिनमें सत्यता है, यथार्थता है, वास्तविकता है, उनके बोल कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनकी इंद्रिया क्या करेंगे, उनका संग क्या करेगा, उनकी स्मृति क्या करेंगी, उनकी स्वरूप क्या होगा उनका, ये सब बोला था ना कल, ये सब निशानियां सुनाई कल बाबा,
रियलिटी
जो रियल रियलिटी जिनमें है, तो ये मैं हूँ और ये मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या ये मेरे संकल्प है, क्या मुझे ये शोभता है, विश्व कल्याणकारी हम स्वयं को कह रहे और सोच रहे, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति नफरत सोच रहे, ये मेरे सामने ना आए, मैं इसे बात नहीं करूं, इसमें बहुत अवगुण है, किसी के अवगुणों का चिंतन कर रहे हैं। केवल योग में बैठ के इतना नहीं चिंतन करने में, ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, उसको सबकॉन्शियस माइंड में जाने दें, अगर मैं प्रेम स्वरूप हूं तो मेरे अंदर विश्व की हर आत्मा के प्रति प्रेम, क्या वो है, किन किन के प्रति नहीं है उनको इमर्ज करो, और क्यों नहीं है उन आत्माओं के प्रति, क्या है वे, क्या है इस आत्मा की, जैसे वो आत्मा मेरे सामने आ जाती है एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, स्लोगन पे घुसे आओ, तो क्या करो नई दुनिया को आह्वान करना, शक्तियों का आह्वान करना, गुणों का आह्वान करना, हमेशा बाबा तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो, स्लोगन। और
अभी तो आह्वान किया, लोग हमारे आह्वान कर रहे हैं
और बोलो बोलो
आशीष, ज्ञान का तीसरा मित्र खुला रहेगा तो सदा खुशी रहेगी,
सदा खुशी रहेगी, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, ज्ञान का तीसरा मित्र अर्थात बुद्धि, अर्थात ज्ञान,
बुद्धि सजग रहेगी, सजग रहेगी।
नहीं हम इस पे थे ना, दुखी दुखी होने के कारण, तो एक तो याद कम, सुबह से चालू करो, सुबह से लेके तो रात तक, फाउंडेशन है अमृत वेला, अमृत वेला मिस हुआ तो दुखी, जैसे अमृत वेला मिस हुआ वो कभी सुखी नहीं रह सकता, दिन भर कमी रहेगी, मन खाता रहेगा, आत्मग्लानी का भाव जागृत होगा, खिन्न होगा मन, दुखी होगा अंदर से ही, पीड़ित होगा, क्योंकि उसको ज्ञान सब पता है, उसके बावजूद भी है वो, अभी होने का कारण भी क्या, रोक सकते थे कारण को, फिर भी रोका नहीं, कोई मोह था जिसने रात में जागने के लिए मजबूर किया, चाहे बातें या कुछ देखना या टीवी हो या कुछ हो, सेवा कुछ भी हो, आलस्य अलबेलापन, एनीथिंग, कोई भी कारण हो, तो एक तो वो, एक तो मिस होना, दूसरा कम शक्तिशाली होना, कम शक्तिशाली होना, कम समय होना, तो भी दुख, कम शक्तिशाली, कम समय, शक्तिशाली भी हुआ कम समय, उसमें भी अशरीरीपन का कितना देर अनुभव किया, परमधाम की स्थिति कितना देर रही,
तो लंबे समय बैठने दे,
लंबा समय ही बैठना पड़ेगा,
बुद्धि की शक्ति भी थोड़ा
उसके सिवा नहीं होगा, क्योंकि योग अर्थात हमको ज्वालामुखी योग करना है, केवल बैठ गए, बाबा से बातें की, संबंध जोड़ लिए, रूरियान कर ली, स्वयं से रूरियान, बाप से रूरियान, ये तो ठीक है, ये भी योग ही है, परंतु आत्मा स्थिति में स्थित हो जाए और उस आत्मा स्थिति में स्थित होकर परम धाम में लंबा समय टिकना, वो चाहिए, तब विकर्म विनाश होते। बाबा से बात करके, बाबा को जीवन की कहानी सुना के, बाबा की फरियाद करके, ये सबसे विकर्म विनाश नहीं होंगे, वो से खुशी होगी
भक्ति,
परंतु वो भक्ति है एक प्रकार से, और भी ऊपर ऊपर जाना है कि नहीं, कि बस वही रहना है, जिस दिन आए थे बस वही कमेंट्री, मैं आत्मा हूँ, जो पहले दिन सुनी थी सेंटर में, बस अभी 10 साल हो गए वही कमेंट्री चालू है,
मीडियम में भी जो समझाते हैं, जो भरा हुआ वही तो समझाते
हैं, अभी अपनी कमेंट्री स्वयं बनाओ और ऊपर जाओ, स्थिति को पावरफुल बनानी है, तो परम धाम में लंबा समय, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व है, वहां इन तत्वों का आकर्षण नहीं है, इसके लिए वहां टिकना है, क्योंकि वहां अगर टिकेंगे तो इन तत्वों का आकर्षण आप ही कम होते जाएगा, इसका फोर्स कम होगा वहां टिकने से,
अगर ऊपर अटक गए तो फिर जाएंगे नहीं,
वो तो बहुत अच्छी अवस्था है।
तीन स्टेज, एक परम धाम में सामने, उसे फिर समीप
तो परम धाम में बहुत समय टिकने का बार बार अभ्यास करना है, बुद्धि वही रहे, एक वही बस, उसके अतिरिक्त और कुछ ना दिखे, उसी से शक्ति लेना, ज्ञान लेना, गुण लेना, पवित्रता लेना, शांति लेना, उसमें समाना, वहां तो वहां के वातावरण में स्थित रहना, वहां की शांति आत्मा में समा जाए, वो सब करना, वहां पर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, आत्मिक दृष्टि का, सब आत्माओं को मैं देख रहा हूँ, वहां सब आत्मा है ना, ये निराकारी दुनिया है, उसमें स्थित रहो थोड़े देर, मैं कहाँ हूँ, एक एक नाम के साथ स्थित होना, मैं निराकारी स्थिति हूँ, मैं शांति धाम में हूँ, तो शांति धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समा रही है, मैं ब्रह्म लोक में हूँ, चारों ओर ब्रह्म तत्व, मैं ब्रह्मांड में हूँ, उसमें थोड़े देर समझना, मैं निराकारी दुनिया हूँ, मैं सब आत्माएं निराकारी है, मैं भी निराकारी, देह यहाँ है ही नहीं, उसमें थोड़ा देर समझना, मैं कहा हूँ आवाज से परे की दुनिया में हूँ, यहाँ निर्वाण में हूँ, यहाँ आवाज ही नहीं है, कोई आवाज नहीं है, मैं इस अवस्था में हूँ कि जहाँ आवाज ही नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस, सन्नाटा, निरवता, निस्तब्ध शांतता है, यहाँ मैं मुक्ति धाम में हूँ, अभी ये जो मुक्ति धाम का सम्मान लिया, मैं कहा हूँ मुक्ति धाम में हूँ, तो मैं मुक्त हूँ, अभी किस किस से मुक्त हूँ, मैं देह से मुक्त हूँ, देह के जो संबंधी है उनसे मुक्त हूँ, देह की दुनिया, कल बोला ना, देह की दुनिया से विस्मृत, देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं वो आत्माएं जिनको स्थाई नशा रहता है, जो बाप के दिल तख्त नशी, ये तख्त ऐसा, इसमें खाओ पियो सो, इतना बड़ा ये तख्त है, ऐसा तख्त और कहीं नहीं है दुनिया में, तो वहां माउंट ऑफ, तो उस स्थिति में मुक्ति, मुक्ति की जो अवस्था है ना, मैं मुक्त हूँ, अभी किस से मुक्त हूँ, इन विचारों से भी मुक्त हूँ, संकल्पों से भी मुक्त हूँ, विकल्पों से भी मुक्त हूँ, सब से मुक्त हूँ, ये तो बहुत अच्छा सम्मान है कि मैं मुक्ति धाम में पहुंचा हूँ, मुक्त हो गया हूँ मैं, कुछ भी नहीं रहा है अभी,
मुक्त हो गया
ये देह, मुक्त न स्थूल देह है, न सूक्ष्म देह है, न कुछ नहीं है, वहां पर
मर गए,
स्थूल देह तो यही छोड़ देना, जैसे स्थूल देह तत्वों में विलीन हो गई, अभी मेरे को दे ही नहीं, अभी कहाँ जाऊँ, ऐसा सोचो अभी मेरी देह तो गई, अभी मैं जाऊँगा, अभी चलो ऊपर, सूक्ष्म शरीर के साथ ऊपर,
बाबा का काम मैंने खींच के रखे रहना, जब हम यहाँ से अपना पोस्ट में फोन करो, बाबा अपने खींच के वही रखे रहना,
नहीं तो सावधान कौन पूरा करेगा,
और जितनी ऊंची प्यूरिटी की स्टेज उतना ही आत्मा परम धाम में टिकती है, जितनी अपवित्रता है उसमें उतनी वो नीचे आती है जल्दी, जितनी इसके लिए लक्ष्य रखना है अपनी प्योरिटी की स्टेज को बढ़ाने का, तो ये करना है। और क्या बोला आज? ये तो हो गया। और ये दुखों का कारण सबसे पहले तो अमृत वेला, दूसरा है मुरली। मुरली सुनना, सुनाना, डिस्कस करना एक बात, उसके आगे का है उस पर समाना, उस पर चिंतन करना, उस पर मनन करना, उस पर बैठकर एकांत में सोचना। कुछ पॉइंट परमानेंट हमारी बुद्धि में रह जाए, बहुत सारे पॉइंट रहेंगे तो उसमें से कुछ याद रहते हैं। वो भी बोला, मैं पहले इस पे आ जाते हैं। तो एक तो मुरली, उसके बाद में दिनचर्या में लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी से, टकराव हो रहा है किसी से,
उसके लिए योग करना बैठ,
तो भी दुखी हो गए, तो है, परंतु परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती है प्रैक्टिकल में कि
प्रैक्टिकल में
परिस्थितियां ऐसी निर्माण होती है कि जो समझ में नहीं आता इस परिस्थिति में अभी क्या किया, क्योंकि हर दिन नई परिस्थिति है,
नई परिस्थिति आती है।
बाबा ने तो बोल देना दुख लो ना दुख लो, आगे फॉर नेक्स्ट परिस्थिति कुछ और ही है। ये वाक्य तो गया कहाँ गया पता नहीं, बुद्धि उड़ गया ऊपर से। तो हर परिस्थिति का भी स्टडी करना है। आत्माएं जो हमारे आसपास की आत्माएं जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके स्वभाव संस्कार भी हमको पता चाहिए। हमको हमारे आसपास की जो आत्माएं हैं उनके स्वभाव संस्कार का भी ज्ञान चाहिए, नहीं तो टकराव होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, वो उससे रूठेगा, वो उससे रूठेगा, नाराज होगा।
इसको कहते हैं परिवार में निश्चय, कौन कैसा है
वो भी पूछा है। सबसे संसार की आत्माओं को सकाश देना बहुत आसान है। यहाँ हम बैठे संसार की सब दुखी आत्माएं मेरे सामने, सबको सकाश, दुखी आत्माएं, अतृप्त आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, पर हमारे डिपार्टमेंट की आत्माएं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जहाँ हम हैं और आसपास वाली आत्माएं उनको हम सकाश देने में जरा, जिससे अभी झगड़ा हुआ था थोड़ी देर पहले, अभी उसको सकाश
नहीं।
हम विश्व की आत्माओं को तो बैठ के बहुत अच्छा सकाश देते हैं, सब दुखी आत्माएं, सबको शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें सब जा रही है, पर इनका क्या है? हर आत्मा को जो समीप की आत्मा है उनको देवकुल की महान आत्माएं देखना, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, जो समीप की आत्मा है, एकदम समीप, जो एकदम समीप है उनसे क्षमा याचना करना, उनसे क्षमा मांगना, जो एकदम नजदीक है जिनको हमने दुखाया, उसके गुण नहीं दिखाई देते, उसमें अवगुण ही दिखाई देते हैं, सारे अवगुण दिखाई देते हैं, एक भी गुण नहीं दिखाई देता। गुण तो है पर उस समय कुछ भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है, क्या करे। तो सकाश देना बहुत बड़ी बात है, पहले तो उसको समझना पड़ेगा कि वो भी राइट है। एक तो पहले है अंडरस्टैंड करना कि वो राइट है, उसके बाद की स्टेप है कि उसको समाना कि वो भी सही है। वो महान आत्मा है ना, ब्राह्मणों की जो हर ब्राह्मणों की विशेषता में मेन जो है, एक तो वो ब्राह्मण बना, बाप को पहचाना है उसने, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, कितनी बड़ी विशेषता है। चाहे उसको कोई भी गुण नहीं, एक काम दो तो वो सब बिगाड़ देता है,
फिर भी
महान है। अभी ऐसी आत्माओं के साथ काम करना है कि जिसको एक काम दो जो इसके पहले भी दे चुका है, हर बार बिगाड़ा है और अभी भी बिगाड़ा, ऐसे नहीं कि अभी समझाया नहीं, हर बार समझाया फिर भी बिगाड़ा, अभी उसको महान आत्मा देखना है।
उसने एक बात में भेद कर सकते हैं कि बाबा भी हमें कितना बार बोल रहे हैं कि बाबा इतना कर रहा है तो हम कितना कर रहे हैं, तो वो भी है कि
लेकिन बहुत ज्यादा कर रहा है ना,
गुस्सा। बाबा ने कहा अंश भी नहीं आना चाहिए, रोब अंश कुछ नहीं, हर आत्मा को प्रेम स्वरूप देखना, हर आत्मा को मुझे प्रेम देना है, ये संकल्प। डिपार्टमेंट वाले बाहर में तो कर ही रहे, जो आसपास वाले जो दुख दे रहे हैं, दुख ले रहे हैं, उन आत्माओं को महान आत्मा देखना, प्रेम स्वरूप आत्मा देखना, और उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। दुखों का कारण, हमारे दुखों का कारण, हम कुछ तो चाहते कि ये कुछ ऐसा करे
हमारे अनुसार,
हमारे अनुसार हम उसको हमारे अनुसार चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलता है, इसके लिए हम दुखी होते हैं। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, उसको प्रेम स्वरूप देखना और महान आत्मा देखना, डिपार्टमेंट की आत्मा होगा। तो ये कुछ दुखों के कारण है, और भी दुखों के। चलो हम पहले मुरली, आज की और कोई पॉइंट है, नहीं तो हम कल की मुरली पे आ जाते हैं। मेन संडे वाली,
बाप को कितना डिफेम
किया, बाप को डिफेम किया, ग्लानी की, जब मेरी हद से ज्यादा ग्लानी करते हो तब मैं आता हूँ तुम पर उपकार करने। कुछ दिन पहले था, बाप को वेद शास्त्र नहीं सुनाते, यहाँ पर श्लोक अध्ययन, ये तो वेद पाठशाला नहीं है, ये गीता पाठशाला है। बाप सब में फूल है, ज्ञान में फूल है, प्रेम में फूल है, शांति में फूल है, प्यार में फूल
है,
धारण करना। शिव जयंती, शिवरात्रि, ब्राइड ग्रूम सब में नहीं हो सकता, एक ही ब्राइड ग्रूम में, बाकी सब ब्राइड। चलो कल की मुरली कौन कल की मुरली
प्योरिटी के रायल की
प्योरिटी एंड प्योरिटी नहीं रियल
रियलिटी की रायल की
मेरे दादी डॉक्टर साहब आए ना सचिन, हर संडे को आते हैं और हाँ और अच्छी क्लास कराते हैं, पूरा अपडेट वाणी का लाइन बाय लाइन रिवाइज कराते हैं, बहुत विशेष आत्मा, इसलिए हम लोगों का रियलिटी है, सबसे बड़ी रियलिटी है
एक तो स्वरूप में और दूसरा समृति में,
एकदम स्वरूप में और
स्वरूप में रियलिटी। उसकी फिर बाबा ने निशानियां बताई थी, क्या क्या निशानियां होंगी, कर्म
रियलिटी से क्या रॉयल्टी, स्वयं की रियलिटी से रॉयल्टी क्या, बाप की रियलिटी को जानने से क्या क्या रॉयल्टी, ये सारी से स्पष्ट बातें करो और उसका विस्तार करो।
चलो क्या बोला कल की मुरली में बाबा ने, बाप किसको, बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्यों मुरली की शुरुआत बाप, क्योंकि होनहार है, क्योंकि होवनहार है। होवनहार कौन सा शब्द है, हिंदी का शब्द है, हिंदी साहित्य में शब्द नहीं है होवनहार ना, ये सिख में आता है, सिख धर्म, सिख लिटरेचर में शब्द आता है, होवनहार शब्द हिंदी साहित्य का शब्द ही नहीं है। गुरु नानक
गुरुमुखी,
गुरुमुखी में आता है, गुरु ग्रंथ साहिब में आता है। तो बाप बच्चों को देख हर्षित होते हैं, क्योंकि क्योंकि सब होवनहार, वर्तमान और भविष्य, तकदीर में बाबा क्या, तस्वीर में बाबा क्या देखते हैं, तकदीर को देखते हैं, हर एक बच्चे के फीचर में, वर्तमान फीचर में क्या देखते हैं,
भविष्य को,
फ्यूचर, फ्यूचर देखते हैं ना, फीचर में फ्यूचर देखते हैं और तस्वीर में तकदीर देखते हैं। तो हर बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है, हर बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। लास्ट संडे की मुरली में बाबा ने कहा ना, जो थोड़े में राजी हो जाते हैं वो है भक्त, जब भक्तपन का अंश भी नहीं रहेगा तब कहेंगे संपूर्ण अधिकारी। लास्ट संडे तो बाप का हर बच्चा स्वर्ग का अधिकारी है, बाप को भी ईश्वरीय फकूर है, क्या देखकर कि मेरे सभी बच्चे इतने तकदीरवान हैं। बाप को भी नशा है, बाबा भगवान को भी नशा है कि मेरे बच्चे सारे विश्व में ऐसे तकदीरवान बच्चे और किसी के नहीं है। बाप को भी ईश्वरीय फकूर है, और कौन सा ईश्वरीय फकूर है? बाबा को,
जितना बाप को है।
वो तो बोला, वो आगे बोला, पर उसके पहले कि बाबा को और क्या क्या नशा है। एक तो नशा बोल दिया कि मेरा एक एक बच्चा तकदीरवान है, दूसरा बाप को नशा है तुम बाप से भी बड़े जादूगर हो, बाप को नशा है तुम बाप से भी तीखे जादूगर हो। मेरा हर एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग, चाहे युवा, चाहे अनपढ़, चाहे नेता, चाहे अभिनेता, चाहे वैज्ञानिक। ये संसार के जो नेता अभिनेता वैज्ञानिक है, तुमको उन पलक से कहते हो, निश्चय बुद्धि होकर कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने पा लिया। मंडे का वरदान याद है ना? तो यहाँ पर कोई भी हो, सब विशेष आत्माएं हैं। तो ये बाप को नशा है, और भी कोई नशा है उसको?
दादा को था ही नशा।
मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है।
राजा बच्चा है, बाप को तुमने पहचाना। यहाँ चाहे पुरुषार्थ न भी करे कोई, फिर भी संसार की तुलना में वो आगे है।
बैठे बैठे
तो बाबा को भी नशा है। तो जैसे बाप को ईश्वरीय फकूर है, वैसे तुम बच्चों को भी अपनी तकदीर पर इतना फकूर है, ऐसा नशा है।
फकूर शब्द क्या होता
है? फकूर उर्दू नशा, रुहाब, गुरूर,
खुमार,
ये सब नशे के अलग अलग शब्द।
गर्व है
फकूर।
फिर बाप आज बच्चों की क्या विशेषता देखते हैं? रियलिटी की रॉयल्टी, रियलिटी अर्थात सत्यता, रियलिटी अर्थात सत्यता, सच्चाई, हकीकत, यथार्थता, वास्तविकता, रॉयल्टी अर्थात अलौकिकता। तो जहाँ सत्यता है वहीं अलौकिकता है। ये मुरली है सत्यता के ऊपर, ये मुरली है सच्चाई के ऊपर। तो जिसमें जितनी सच्चाई वही उतना अलौकिक, सभ्यता कहो जो भी कहो, अलौकिकता, सभ्यता, रॉयल्टी। तो रियलिटी शब्द को पहले समझना है, इसके पहले कि हम मुरली के अंदर जाए। तो रियलिटी अर्थात सत्यता, सत्यता, संपूर्ण सत्यता, झूठ का अंश ना हो अंदर, ऐसी सत्यता। तो ये सत्यता बाबा ने फिर बहुत सारे रूप बताए उसके। सबसे पहले स्मृति, सबसे पहले स्वरूप, अपने स्वरूप में, अपने असली स्वरूप में स्थित होना। अगर ऐसे स्थित हो तो दुनिया वाले क्या देखेंगे तुमको? जैसे अलौकिक फरिश्ता है कोई, इस दुनिया से नहीं, जैसे कोई स्वर्ग का देवता है। तुम्हारी साधारण सूरत में अलौकिक सीरत दिखाई देगी, स्थूल सीरत में अलौकिक हो जाएगी तुम्हारी। तो सबसे पहला ये, दूसरा स्मृति। तो स्मृति कौन सी? एक बाप, दूसरा ना कोई। उसमें सबसे पहले कर्म, फिर बोल, फिर
संग,
और उसके बाद में नयन, और उसके बाद में कर्मेंद्रिय। सबसे पहले कर्म कैसे होंगे ऐसी आत्माओं के? जो सत्यता में स्थित है, श्रेष्ठ बाप समान चरित्र होंगे उनके कर्म। जैसे बाप के कर्म चरित्र के रूप में गायन है, तो उनके कर्म भी चरित्र। एक दूसरा, कर्म श्रेष्ठ होंगे, कर्म महान होंगे। बोल कैसे होंगे? समर्थ होंगे बोल,
असमर्थ समर्थ होना देंगे।
नहीं, वो आगे वो संग। बोल कैसे होंगे? सत्वचन। बोल कैसे होंगे? कुछ प्राप्ति कराने वाले, अथॉरिटी और प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले बोल। समर्थ अर्थात फल दिलाने वाले बोल अर्थात सत्वचन होंगे उनके जो बोल है। बोल फिर उसके बाद में उनका संग क्या करेगा? पारस का काम करेगा, असमर्थ को समर्थ, नकली को असली बनाने वाला।
जो उसके संपर्क में
आएगा, अनुभव करेगा। तो ये फिर उसके बाद में नयन क्या करेंगे?
जादू
जादू की वस्तु का काम करेंगे। नयन क्या करेंगे? और क्या करेंगे, नैन में बहुत सारी चीजें
अनुभव,
यहाँ अनुभव कराएंगे चारों
धामों
का एक सेकंड में। अभी अभी फूल वतन, अभी अभी संगम युग, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी निराकारी दुनिया, अभी अभी दुखी, अभी अभी सुख का अनुभव कराएंगे, अभी अभी अंतिम जन्म, अभी अभी फर्स्ट जन्म के अनुभव कराएंगे। किसी भी आत्मा को एक सेकंड में 84 जन्मों का ज्ञान दे देंगे, ज्ञान का अनुभव कराएंगे, जन्मों का अनुभव कराएंगे एक सेकंड में। कितनी ऊंची बात है, तो ये सब कार्य दृष्टि से होने हैं। हम तो हम का मंत्र ये है, जादू का मंत्र बाबा ने कहा। इसी से ही किसी भी आत्मा को 84 जन्मों का जो ज्ञान है उसका अनुभव करा देंगे, जन्मों का अनुभव करा देंगे। हम सो सो हम, ये है जादू का मंत्र। मन मना भव, बाबा परसों की मुरली था ना, ये मंत्र भी है, ये बाबा युक्ति भी बताते हैं, ये चाबी भी है, तीन शब्द थे परसों की मुरली। ये मंत्र भी है, ये युक्ति भी है, ये चाबी भी है,
ये अक्षर भी है,
ये अक्षर भी है, अक्षर भी है। तो
माया को बस करने का,
माया को बस करने का वशीकरण मंत्र है। संसार में वशीकरण मंत्र होते हैं ना, पति को वश करने का वशीकरण मंत्र, ऐसे अलग अलग लिस्ट है बहुत बड़ी। किसी भूत प्रेत को वश में करने का मंत्र, पत्नी को वश में करने का मंत्र, तो वैसे ये माया को वश में करने का मंत्र है, जिसे वशीकरण मंत्र कहा जाता है। तो ये उसके बाद तुम ऑलरेडी कर चुके हो
ऑलरेडी।
इस समय बाप तुम्हारी मुट्ठी में है, एक मुरली में था, इस समय बाप तुम्हारी मुट्ठी में है, बाप तुम्हारा सर्वेंट है। आज बोला बाबा ने, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनकर आया, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। भक्तों की भी बहुत सेवा की है उसने भक्ति काल में, तो अभी नहीं करेगा क्या? हाँ, नाम याची खीर साख तो सोको वांची गुरे राख तो पुरंदराचा हा परमात्मा, ऐसे गायन है। सब काम किए उसने भक्ति, भक्तों के लिए। तो बोल, संग, वाणी, दृष्टि को छोड़, दृष्टि का बोल दिया, वृत्ति को छोड़ दिया बाबा ने। फिर उसके बाद में कर्मेंद्रिया द्वारा दातापन, हर कर्मेंद्रिया देने वाली दातापन। उसके बाद में ऐसी आत्मा है, संकल्प कैसे होंगे, कहीं पर भी झुकेंगे नहीं मायावी आकर्षण में। जैसे रॉयल लोग होते हैं ना, उनकी नजर कहीं नहीं जाती, जैसे उनका पेट भरा हुआ है, वो किसी के अधीन नहीं होते हैं, वैसे तुम्हारी भी कहीं पर आंख नहीं डूबेगी, कहीं नजर नहीं जाएगी। तुम्हारी नयनों में तुम्हारे रॉयल और रियल नयन हो जाएंगे, तुम्हारा बुद्धि रूपी पेड़ भरा होगा, किसी के अधीन नहीं होंगे, पेट पेट रियलिटी में होंगे। नयनों में बिंदु बाप के सिवा और कुछ समाया नहीं होगा, वैभव और व्यक्ति अल्पकाल और अल्पज्ञ है, व्यक्ति अल्पज्ञ है और वैभव अल्पकाल है, इसमें कभी वो आकर्षित नहीं होंगे, इन सभी आकर्षणों से परे रहेंगे। तो ये सब निशानियां हैं क्योंकि जो सत्यता में स्थित है, सत्यता, यथार्थता, वास्तविकता, हकीकत, क्या कहेंगे, और कई शब्द है सत्यता के लिए, रियलिटी। तो ये जो है वही रॉयल आत्माएं हैं, उन्हीं में अलौकिकता है, उन्हीं में रॉयल्टी है। उनके बोल कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनके चर्मेंद्री, बाबा ने वृत्ति को छोड़ दिया, वृत्ति भी उनकी महान होगी, इसमें छोड़ दिया, वृत्ति आ ही जाएगी, संकल्प भी आ गया, बस वही सब कुछ।
स्कॉलरशिप को
भी वृत्ति बोलते हैं, स्कॉलरशिप तो स्कूल में मिलती है,
वृत्ति बोलते हैं ना,
छात्रवृत्ति वो अलग,
नहीं बैठे तो ठीक ही थे अपने,
हाँ बराबर है, छात्रवृत्ति
ऐसे है, यार आत्मा को महान समझने का, कमजोरी तो हमारी थी और हम उसको कमजोर कर रहे
हैं। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप को हिंदी शब्द है। चलो तो ये आत्मा होगा। फिर बाबा ने पूछा पंजाब वालों को, क्या बोला पंजाब वालों को, कौन से डिवीजन में हो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, तो फर्स्ट डिवीजन वालों की निशानी और सेकंड डिवीजन वालों की निशानी, बोलो मिठाई भाई, पंजाब वाले, पंजाब वाले क्या, फर्स्ट डिवीजन वाले सर्व प्राप्ति संपन्न, अभी ऐसे नहीं कि खुशी है तो शक्ति नहीं, अतीन्द्रिय सुख है तो आनंद नहीं, ये है तो वो नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न, तभी संपूर्ण राज्य मिलेगा, प्रकृति का भी संपूर्ण सुख मिलेगा, सतो प्रधानता की प्राप्ति, अगर एक भी अनुभूति कम तो सेकंड डिवीजन, सोलह में चले जाएंगे, चौदह में चले जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे,
सोलह में
नहीं आएंगे,
चौदह में।
बाबा ने यहाँ तक कहा है अमृत वेला के लिए, अमृत वेला एक घंटा लेट तो उधर एक जन्म लेट ये बोला है बाबा ने। थोड़ा सा दिल शिकस्त होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए। जब दिल शिकस्त होता है आदमी ना पुरुषार्थ में, तब थोड़ा फिर आगे और बढ़ता है, होना चाहिए थोड़ा।
तो आप
थोड़ा सा धक्का तो लगना चाहिए ना कि ये मेरे से आगे है, मैं कम हूँ, तो उमंग आएगा कि मैं भी करूँ। आग चाहिए, आग बिना आग के नहीं होता है। वो तो है। चलो, और ये यहाँ पूरा हुआ, फिर उसके बाद में दीदी से मुलाकात लास्ट में करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है वो भी, पंजाब के ग्रुप से मुलाकात। हाँ, तो बाबा ने कहा पंजाब अर्थात नाम ही उनका पंजाब, पंजाब अर्थात
तीन बातें,
पन मतलब पांच, आप मतलब नदी, पंजाब अर्थात पांच नदियाँ, कौन सी है
कौन नदी है मैम?
चिराग, झेलम, सतलज, ब्यास और रावी। उसमें से दो नदियां 1947 के बाद में पाकिस्तान में चली गई, रावी और नहीं झेलम और चिराग। अभी एक छग्गर चिनाब, अभी तो चार है मेन। तो बाबा ने उसको भी याद किया ना, नदियां यहाँ है, तो यहाँ से बहुत सारी ज्ञान नदियां निकली है, इनको महादानी है, ये कन्यादान किया, ये भी पंजाब की तीन विशेषताओं में से सेकंड की सेकंड नंबर ये विशेषता बताएंगे। तो ये तो यहाँ पर निर्भय, किससे निर्भय? माया के किसी भी रूप से डरने वाले नहीं, ऐसी निर्भय आत्मा है। हाँ, वो आगे। तो ये सबसे पहले यहाँ बाबा ने क्या बोला, उन वो शेर है, तो जैसा नाम है वैसे ही है। फिर उसके बाद में जंगल का शेर अकेला घूमता है, इसके लिए बादशाह होता है, ये भी बोला। फिर तीन विशेषता, सबसे पहले अरविंद भाई सबसे पहली विशेषता पंजाब की आदि की स्थापना काल की बताए ना, विशेष पाठ रहा उनका, हंगामे में भी आग में भी, हंगामे की आग में भी अचल रहे, विजय का झंडा लहराया, वहां पर अनेक धर्मों के बीच आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, अहिंसा की भूमि में अहिंसा की भूमि में अहिंसा की स्थापना की, ये सब विशेषता है। ललकारबाद में वो गुरुद्वारे की बात है। फिर उसके बाद में दूसरी विशेषता बोल दिया, नदिया। तीसरी विशेषता
गुरुद्वारे की बात।
दूसरी विशेषता विस्तार, सेवाओं का विस्तार, तीर्थ स्थान वहाँ पर बहुत है, ये बोला। फिर बोला क्या, ये तो तीन विशेषता है, बोला मुझे नहीं पता सेंटर की बात कर रहे हैं बाबा, सेवा केंद्र की बात कर रहे हैं बाबा, और कोई बात नहीं कर रहे। उसके बाद में बाबा ने कहा पंजाब से ऐसी नाम वाली आत्माएं निकालो कि जो कि प्रत्यक्षता करे, ऐसी नाम जिनसे नाम से ही सेवा हो, और तुमको बड़े जोर से आवाज करना है, क्योंकि उन गुरुद्वारों में तो आवाज कंटिन्यूस चालू रहता है ना म्यूजिक वहाँ पे, गुरुवाणी कंटिन्यूस चालू रहता है 24 घंटा। तो ये पंजाब का फिनिश हुआ। उसके बाद में प्रश्न पूछा माता जी, कौन सा प्रश्न पूछा, स्थाई नशा किन को रह सकता है, बोलो मुझे, स्थाई नशा किन को रह सकता है जो बाप के दिल नशीन है। ये दिन तक तो कितना बड़ा है, इसमें घूमो फिरो, उठो बैठो, खाओ पियो, कितना बड़ा है, ये केवल अभी मिलता है और किसी को नहीं मिलता है ऐसा तक, बहुत बड़ा तक। बाप का दिल तक कहो या मस्तक, तुम बाप के मस्तक मणि हो, सिर के ताज हो, फिर मोर हो, या फिर दिल तक से नशीन हो, गले का हार हो, बाप के साथ साथ पूजनीय आत्मा हो, भक्त के इष्ट देव हो, लासंडे महीनों के सितारे हो, तो ये सब हो। फिर और तक, और तख्त के लिए क्या कहा, नहीं अकल तत्व ये जो तख्त है इसमें जो स्थित आत्मा है वो देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहती है। देह और देह की दुनिया से विस्मृत रहती है अकाल तत्व वाली जो आत्मा। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न,
दूसरा प्रश्न था
सुख के सागर में कौन समाये रह सकते हैं? तो जो
अंतर्मुखी
है, जो अंतर्मुखी है वो इंदौर वाले सदा सुखी
है।
इंदौर, तो बाबा ने कहा सुख के सागर में समाये हुए, सुख के सागर की संतान सदा सुख के सागर में समाये हुए, सुखदाता की संतान मास्टर सुखदाता। कोई भी तुम, तुम्हारे पास किसी भी भावना से आए तो उसकी भावना संपन्न करने वाले ऐसे तुम सर्व संपन्न मूर्तियां हो। जैसे बाप के खजाने में कोई भी खजाना, बाप अतृप्त नहीं है, वैसे तुम भी तृप्त आत्मा है, फुल हो, भरपूर हो। तो इसमें समान कौन कौन से? मैं तृप्त आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, ये सारे समान है। मास्टर सुखदाता की संतान, मास्टर सुखदाता हूँ, उन दो पैराग्राफ में से ये सब समान। पंजाब के ग्रुप में से समान, मैं निर्भय आत्मा, मैं शेर हूँ, शेर की तरह जीऊंगा और शेर की तरह मरूंगा, बादशाह हूँ, जंगल का राजा हूँ, बाप के लिए जीऊंगा और बाप के लिए मरूंगा। देखो कितने पावरफुल संकल्प है ये सारे।
जंगल में भैंसा मार रहा
था, मैं शेर हूँ, निर्भय हूँ,
बहुत बड़े,
मुझे किसी से डर नहीं, भूत भी मुझसे डरते हैं। मैं मास्टर भूतनाथ हूँ, भूतनाथ की संतान, भूतों को भी मुझसे डर है, कोई हिंसक प्राणी भी, सब हिंसक प्राणी मेरे सामने आते ही हिंसक हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, किसी से भय नहीं, अकेले एकांत से भय नहीं, कमरे में अकेले सोने से भय नहीं, सन्नाटे से भय नहीं, स्मशान से भय नहीं, मैं निर्भय आत्मा हूँ।
मैं मास्टर बात
सभी प्राणियों को भी प्रेम की बात, प्रेम की किरणें दो, सभी प्राणी तुम्हारे पास आते ही अहिंसक हो जाएं। योगी के वाइब्रेशन ऐसे होते हैं कि उनके पास आते ही अहिंसक हो जाते,
लेकिन फिर भी अपना बचाव रखना है,
वो तो रखना है ही। मैं बता रहा हूँ समान 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 की बात है, संकल्प की बात है, समान की बात है। और ये तो हो गया समान। अभी चलो दीदी से मुलाकात,
की बात
क्या पूछा दीदी को बाबा ने? क्या कहा कि अंत में साक्षात्कार होंगे, वो दिव्य दृष्टि वाले साक्षात्कार अलग, साक्षात रूप के साक्षात्कार, दिव्य दृष्टि वाले साक्षात्कार तो ड्रामा अनुसार हो गए ही, ये साक्षात्कार है साक्षात रूप से साक्षात्कार, जो रियलिटी में भरपूर है, संपन्न है, वही रॉयलिटी में जो स्थित है, उनके जवाब प्रत्यक्षता होगी। बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ की गति बड़ी गुई है, उसमें टू नंबर वाला भी वन नंबर वाला भी टू हो सकता है। और अभी बहुत सारी आत्माएं छिपी हुई है, धूल बताए ना, जैसे हीरा छिपा रहता
है, रेत की धूल,
रेत की धूल का पर्दा, फिर इसमें छिपे हुए उसके लिए, अभी नहीं, अंत में सब होगा। बस अंत का अर्थ भी बताया, संगम युग का अंत कहा बाबा ने, मतलब प्रत्यक्ष संगम युग के थोड़ा समय पहले, तब ये प्रत्यक्षता होगी, तब फिर ये कंफ्यूजन नहीं होगा इसको क्यों वो क्यों, कौन का राजा नहीं, कौन राजा कौन रानी और कौन रॉयल फैमिली में आने वाला है, वो सारा प्रत्यक्ष हो जाएगा, पूरा बड़ा स्क्रीन में दिख जाएगा इधर, ठीक है ना? नाम क्या है तुम्हारा?
अनिल।
अनिल पूरा स्क्रीन, बड़े स्क्रीन में फटाफट बाबा टाइप करेंगे अनिल, पूरा आ जाएगा, थट 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 थट, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। बाबा ने कहा ना वर्तमान में दाना कौन सा है और भविष्य में रॉयल फैमिली में कहाँ है, पूरा स्क्रीन में कंप्लीट। और अभी क्या क्या किया, कुछ भी छिप नहीं, कुछ भी छिप नहीं सकेगा किसी का भी, कुछ भी किसी का छिप नहीं सकेगा, सब प्रत्यक्ष।
मामा बाबा की बात बोली थी ना,
मामा बाबा को कोई रेस वहाँ पे कोई हो नहीं सकती उनकी, प्रत्यक्षता हो गई। तो जो छिपे नहीं रहेंगे, जो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, उनके लिए फिर कोई रेस नहीं है, वो बात है। और आठ में पहला और अंत, उसमें भी अंतर है, पॉलिश दी उसमें भी, मतलब ये एक नंबर पे क्यों है, क्योंकि फर्क तो है। बाकी बाबा ने कहा दिखाई में, दूर से कोई दिखाई नहीं देगा कि क्या कमी किसमें है, पॉलिश में छिप जाता है। तो ये थी कल की मुरली। दादी ने क्या बोला अभी, और भी एक बाप की तरफ से रियलिटी,
स्वयं की तरफ से,
बाप की तरफ। ये कल का एक हफ्ते का शैलेंद्र भाई वो हो गया। अच्छा अच्छा बोलाओ तो 10 मिनट है। उसको तो नहीं याद नहीं करते नहीं एक हफ्ते का ना आत्मा के सेफ्टी का साधन है याद याद की यात्रा। याद की यात्रा से बहुत सारे फायदे बताए उस मुरली में क्या क्या जैसे याद की यात्रा से पता बड़ी खुशी रहेगी। याद की यात्रा से कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी। याद की यात्रा से बैटरी चार्ज होगी। इसके लिए आंखें खुली रखो। बाबा बैटरी चार्ज करने वाला कोई आंखें बंद करे तो क्या कहेंगे बाबा नजर से निहाल करने आए पर चिंतन परदर्शन दो वरदान थे इसके ऊपर और टाइम वेस्ट नहीं करना है ना अपना ना दूसरों का। अपना तो नहीं कर रहे हो पर दूसरों का कर रहे हो। समय बहुत थोड़ा है और तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है।
हमारे पर भी किसी का संकल्प चलाए
हम गए गए और जा ही नहीं रहे वहाँ से। वो चाहता है कि हम जाए पर हम लगे हुए हैं। किसी को फोन किए वो चाहता है रखे हम रख ही नहीं रहे। हम किसी को फोन कर रहे वो योग में बैठा था हमने उसका योग तोड़ दिया
जबकि वो बाद में कर
सकते वो कर सकते वो अर्जेंट नहीं था। अर्जेंट कुछ है क्या बताओ सीमन भाई पेशेंट का इमरजेंसी छोड़ के और कोई संसार में इमरजेंसी नहीं है। कुछ इमरजेंसी नहीं हर काम थोड़ा हो सकता है मतलब इस तरह की इमरजेंसी नहीं है। नहीं वो नहीं करते और नहीं चलो और फटाफट पॉइंट बोलो थोड़े पावरफुल पॉइंट बोलो
और वाणी द्वारा
वाणी द्वारा सुख और शांति सुख और शांति दो। रूहानी मौज में रहेंगे और
उदासी को
अपना दासी बना लो चेहरे पर नहीं आने पर अंदर रखो अंदर ही अंदर दबा के चेहरे पर नहीं आने देना पर अंदर रखना क्या कि समाप्त करना
नहीं समाप्त करना।
बाबा ने उसके बारे में कुछ बोला नहीं डिटैच हो जाओ इस शरीर से ड्रॉप साइलेंस डिटैच कितना अच्छा शब्द है डिटैच न्यारा अलग सेपरेट
लाइट हाउस
विघटन हाँ कोई बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमको ज्ञान सुनाने की सेवा ना मिले। ज्ञान सुनाना तो सेवा अगर मिले तो ज्ञान सुनेगा उमंग सब में है बाबा ने कहा परंतु अगर सेवा न मिले तो स्थिति डगमग हो जाती है अवस्था गिर जाती है अवस्था में गिरावट आ जाती है और स्थिति डगमग हो जाती है। तो बाबा ने कहा अगर वो सेवा न मिले अपनी धारणाओं का प्रभाव डालोगे तो भी फुल मार्क्स जमा हो जाएगी सेवा भी। कोई कोई भाषण देने की सेवा करने वाले का ज्यादा मार्क्स है और बाकी का कम है ऐसा तो है नहीं ना। चाहे हजारों के सामने भाषण देने की सेवा हो या झाड़ू लगाने की सेवा हो सिमिलर सेम आनंद आना चाहिए उसमें। चाहे कोई कितनी भी सेवा करे कितनी भी भाग दौड़ करे कितना भी भाषण करे यदि सीमित भाव निर्मल वाणी और निर्मल निमित्त भाव निर्मल भाव और निमित्त वाणी निमित्त भाव निर्मल भाव और निर्मल वाणी नहीं है तो केवल 5% जमा होगा।
और बाबा ने कहा कि स्वयं कितने शक्तिशाली रहे कितनों को योग बना है कितनों को सुख दिया उससे मार्क्स मिले कौन कितना सेंटर खोल लिया भाषण क्लास
कर कुछ नहीं होगा। इस ड्रामा में इस यज्ञ में सबसे आगे वो आत्मा है जिसकी स्थिति आगे किसने कितने सेंटर खोले किसने कितने क्या किया कितने सेवाएं की कितने को ज्ञान सुनाया कितने को कोर्स कराया वो सब अलग। इस यज्ञ में वो आगे है जिसकी प्योरिटी सबसे आगे है और जिसकी स्थिति आगे है। बस प्योरिटी की परसेंटेज क्या है कौन सी स्टेज है प्योरिटी की संकल्प में क्या चल रहा है क्या इच्छा है हमें दैहिक आकर्षण कितना समाप्त हुआ है देह के प्रति जो आकर्षण है वो कितना समाप्त हुआ है देह से आत्मा कितनी न्यारी हो गई है उस पर मार्क्स है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी बहुत पुराना पिछले हफ्ता अभी हफ्ता नहीं बड़े बड़े सेंटर संभालने वाले भी योग नहीं है बाबा ने कहा, परंतु वो जो बांधे लिया है, जो बंधन में है, वो बाप को ज्यादा याद करती है और यहाँ रहने वाले कम करते हैं, क्योंकि इनका पेट
भरा
हुआ है, पा लिया, अभी क्या करना है, हो गया, चलो वही तो है मुरली और वही अमृत वाला, कर तो रहे और क्या करना है, प्लेटिव प्लेटिव फेज कर रहा है बस। पुरुषार्थ का ग्राफ ऐसा है, सीधा ऐसा नहीं है, सीधा सीधा। और बोलो, बुरे संस्कार, अच्छे संस्कार, प्यूरिटी के संस्कार, पढ़ाई के संस्कार, रॉयल संस्कार, बहुत सारे संस्कार उस मुरली में होंगे। तो बुरे संस्कार को नष्ट करना है, अच्छे संस्कार को। और
खुशहाल वो है जो स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को
खुशहाल वो है,
सर्व को स्वयं को प्रिय, सर्व को प्रिय लगते हैं,
खुशहाल वो नहीं है, खुशहाल वो स्वयं के संतुष्ट और खुशनुमा जीवन द्वारा जो हर कदम में सेवा करते हैं, वो है सच्चे सेवाधारी। और खुशहाल कोई दूसरे है?
नहीं,
वो हम ही है, और उस समय दूसरा था। माताओं की तरफ से कुछ आवाज और किसको याद किया बाबा? करण करावन हार की स्मृति रहे तो मैपन का अभिमान समाप्त हो जाएगा। संभव करने वाले तो शांति की शक्ति में, शांति की शक्ति से ही सारी शक्तियां निकली है। इवन साइंस की शक्ति भी साइलेंस की शक्ति से निकली हुई है। इस साइंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति से तुम असंभव को भी संभव करते, जो दुनिया जिसको असंभव करती है उसको तुम संभव करती है। इसके लिए वो तुम्हारे लिए सहज है, इसके लिए तुम्हारे लिए
खुशहाल रहते भाई, स्वयं और सब के प्रिय।
हाँ ऐसा है, वो स्वयं के भी और दूसरे के भी प्रिय होते तो है खुशहाल। खुशहाल अर्थात
खुशहाल
नहीं, खुशहाल शब्द का क्या,
हर हालत में खुश।
खुशहाल अर्थात इसमें दो बातें हैं, एक तो वो खुश रहने वाले और संपन्नता। खुशहाल अर्थात प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता और खुशी जब दोनों मिलते हैं तब उसको खुशहाल कहा जाता है। तो खुशी भी है और संपूर्णता भी है, भरपूरता भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, कोई अतृप्तता नहीं है वहाँ पर। हाँ, संपूर्ण खुशी तो उसको, या भरपूरता और खुशी मिला के जो शब्द बनता है वो है खुशहाल। हर हाल में खुश, वो है खुशहाल, वो ही स्वयं को प्रिय लगते हैं और दूसरों को भी प्रिय लगते हैं। और क्या बोला, हो गया,
हो गया।
अभी
विनाशी कमाई के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूएबल है, धारण करो, दैवी कैरेक्टर धारण करो। और
लाइट हाउस,
लाइट हाउस वो चलते फिरते उठते बैठते तुम सेल्वेशन, वो भी मिलिट्री, तुम भी मिलिट्री, पर तुम अंडरग्राउंड मिलिट्री। एक तो मिलिट्री भी हो, दूसरा अटेंशन, वो अटेंशन अर्थात एक जगह खड़े हो जाओ, वो अटेंशन अर्थात साइलेंस हो जाओ, तुम्हारा अटेंशन अर्थात याद, दूसरा ना कोई। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, संसार का बेड़ा फंसा हुआ है, पुकारते हे मान जी खिवैया खेवन हार, बट वो सबको पुकारते हैं। संसार की नाव इस समय रावण की जेल में पड़ी हुई है, सब विकारों के क्या विष नहीं, विकारों के जंजीरों में जकड़े हुए है बाबा ने कहा उस मुरली में, सब विकारों के झंझावात में फंसे हुए। तो उसमें से तुमको निकालना है। साल्वेशन मतलब तू साल्वेज, साल्वेज इंग्लिश शब्द है, साल्वेज अर्थात कोई नाव डूबी है जैसे टाइटैनिक, उसको जो निकालने वाला ग्रुप है उसको साल्वेशन कहते हैं। तो तुम साल्वेशन आर्मी हो, क्योंकि संसार की नाव इस समय डूबी हुई है, तो खुद मत डूब जाना बस तुमको बाहर रहना है, संसार को निकालने वाले हो तो तुम्हारी स्थिति संसार से बहुत ऊंची चाहिए, बहुत ऊंची। और वाणी द्वारा हो गया ना, सबको खुश शांति दो, बुक बंद, बुक बंद,
बुक बंद
मिल नहीं रहा ना।
ठीक है, ठीक है,
लौकिक पिता को याद करते हो,
तो अपने बाप को याद करते हो, इसको याद नहीं करते। बाप आबू यहाँ भारत में आता है, मगध देश में भारत में बाप नहीं आते, मगध को भी याद किया था ना बाबा। भारत में पहले 16 महाजनपद थे, सिंध हैदराबाद मगध देश नहीं है, भारत बौद्ध काल में भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था, उसमें सबसे बड़ा जनपद था मगध, जिसकी राजधानी थी पहले राजगीर था, फिर बाद में पाटलिपुत्र बनी, वो है मगध, जिसमें अजात शत्रु से लेकर तो हर्षवर्धन से लेकर तो ये सब ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी मगध।
वो भी कौन कह रहे
हैं? मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास है। हर मगध ही इस समय भारतीय है। हम ही सब मगध निवासी है। हम ही मगध है। वही पहले भारत में जो सबसे बड़ा जनपद था धननंद का, नंदों का राज्य था, जो कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने उखाड़ फेंका। पर मौर्य शासक है उसका बेटा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, और फिर उसके बाद में अशोक, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, ये सब मगध था। पर मगध ही भारत बाद में भारत बन गया। मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास। तो बाबा ने कहा ना पहले मगध देश कहते थे, तो बाप उस मगध में नहीं आते, बाबा यहाँ आते हैं। मतलब उस समय नहीं आते, अभी आते हैं।
वर्तमान में मगध है
ना? ना, ये सभी मगध है। बिहार, उड़ीसा, यूपी का थोड़ा एरिया ही मगध है।
मगध का
ये जो अभी का पटना है वो मगध की राजधानी थी, पाटलिपुत्र। और एक आपने सुखधाम, एक जगह बाबा ने दुखधाम भी लिखा था, गलती थी शायद। होना चाहिए क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आज बोला ना, पतित विकारी दुनिया है, भ्रष्टाचारी दुनिया है, ये शरीर तो यहाँ पर मिटने वाला है, थोड़ा थोड़ा जलने वाला है, कांटों का जंगल, खटमल
खटमल बाहर खटमल घूमते
कोई जो जहाँ है, चाहे धरती पर है, चाहे समुद्र में है, चाहे आकाश में है, चाहे उड़ रहा हो, जो जहाँ है उसको वहीं पर नष्ट होना है, कोई नहीं बचेगा।
चांद पर
नहीं, तुमने बुलाया किसको है? तुमने महाकाल को पुकारा है। भक्ति में पता था जब तुम पुकार रहे थे, तुम किसको पुकार रहे? तुमने अपनी मृत्यु को आह्वान किया है, अभी मरो।
मर गए।
तुमने ही पुकारा ना, मैं तुम्हारे लिए अपना परमधाम छोड़कर, अपना घर छोड़कर तुम्हारे खातिर मैं आया हूँ।
अब नहीं जाऊंगा।
तुम्हारे शरीरों को जलाकर मैं आत्माओं को ले जाने आया हूँ। चाहो ना चाहो, सोचो ना सोचो, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मैं तुमको ले जाऊंगा।
या बाप के पास बैठे और बाहर खटमल खाते
बाहर खटमल खाते हैं पीते हैं। कोई पॉइंट
डबल लाइट रहे ना तो सर जिम्मेवारी को बहुत बाप का दिया।
और
दस दिन पहले देख लो,
पुराना है ये, हफ्ते का बताओ बस। और भी कुछ है? शैलेंद्र भाई का आवाज कम है आज थोड़ा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, चढ़ी तो
हम कागज से देख लेते हैं
कैरेक्टर
या कुछ क्या लिखा है सारी आगे।
अर्जुन का मिशन छोटे छोटे पैराग्राफ थे मुरली में बहुत सारे। आज भी ये इसको याद किया ना, गोपीचंद नहीं थे?
हाँ, गोपीचंद, गोपीचंद राजा को याद किया।
यहाँ गोपीचंद की गीता है, अच्छा लगने पत्थर है, एक पत्थर
महल की दीवार भी बनी हुई है ना वहाँ
पर। और शाम
बाबा ने कहा लक्ष्मी जैसे श्रृंगार दारी है, ऐसे कैसे बनना है सोचो, पांच चार पांच बातें पूछने के लिए श्रृंगार वाले मिले, अपने से पूछना है कि कहाँ था श्रृंगार, क्या है स्वभाव को इनके जैसा बनाया है,
धारणा के लिए था सेकंड पॉइंट। तो सर अभी पूरा करते हैं यहाँ, तो वापस 20 दिन है बाबा को आने को, तो बाबा को गिफ्ट देना एक श्रेष्ठ स्थिति की। बाबा को तुम्हारी बाकी घड़ी ये नहीं चाहिए गिफ्ट, बाबा को गिफ्ट चाहिए फरिश्ता स्थिति की गिफ्ट। तो उसको गिफ्ट दो फरिश्ता स्थिति की, डबल लाइट स्थिति की, मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति की, ऐसी गिफ्ट। तो 20 दिन में अपनी स्थिति को ऐसी अचल और निर्विघ्न बनाना है। पुरानी जो मुरली है उसमें देख लो एक बार वापस क्या क्या होमवर्क था 6 महीनों का, जस्ट ओवर लुक करके, और फिर उसको और थोड़ा 20 दिन अटेंशन से पुरुषार्थ करना, हर आधा आधा घंटे में, अभी नहीं, आधा आधा घंटे में 15-15 मिनट में स्वयं की चेकिंग, 15 मिनट सबसे बेस्ट है, वो नहीं होता तो एक एक घंटे में या आधा आधा घंटे में बार 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 चेकिंग, बार बार स्वयं को याद दिलाना मैं कौन और क्यों और कहां, किसका क्या लक्ष्य है मेरा, अपने लक्ष्य को बार बार याद करना, मैं महान हूं तो मेरा लक्ष्य भी महान है। ये छोटे मोटे कार्य में मैं फंस नहीं सकता, कहीं उलझ नहीं सकता, किसी व्यक्ति में फंस नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। बहुत बढ़िया
नॉर्मल
कौन सा
बोले
थे ना कि देखेंगे देखेंगे।